आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, BibleWani.com में हम आपका स्वागत करते हैं। इज़राइल के इतिहास में अब तक हमने सुना भाग 4 तक। आज हम सुनेंगे इज़राइल के इतिहास का भाग 5, प्रथम प्रोटेस्टेंट मिशन। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जब यीशु समाज तमिलनाडु में थे, तब भारत में पहली बार प्रोटेस्टेंट मिशनरियों का आना हुआ और वे तमिलनाडु भी पहुंचे। 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगाली के अलावा अन्य यूरोपीय देश भी भारत में अपने व्यापार केंद्र स्थापित कर चुके थे। व्यापार करना और लाभ कमाना उनका प्रमुख उद्देश्य था। प्रोटेस्टेंट विश्वास को भारत में पहुंचाने में उनको कोई रुचि नहीं थी। भारत में सबसे पहले जो प्रोटेस्टेंट मिशनरी आए वे थे बार्तोलोम्यू जिगनबाग और हेनरी प्लूथशाप। वे जर्मनी में धर्म विज्ञान के विद्यार्थी थे और वे डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक 4 के द्वारा भारत भेजे गए। ये दो लूथरन कलीसिया के भक्तिवाद नामक एक पुनर्जागरण आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। जिगनबाग और ट्रायंकबार में 1706 में पहुंच गए। ट्रायंकबार के डेनिश अधिकारियों को इन मिशनरियों के आने की सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए तत्पर उनका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। जहाज में से तट पर जाने के लिए नाव पाने में उन्हें 3 दिन लग गए। अंत में जब उन्होंने अपने आप को डेनिश अधिकारी हेसियस के सामने प्रस्तुत किया, नगर में जाने की अनुमति भी उनको आसानी से नहीं दी गई। उसके बाद नगर में उनको रहने के लिए उनको जगह भी नहीं मिली। फिर एक अन्य डेनिश अधिकारी की दया से उनको एक घर प्राप्त हुआ। सेवकाई। भारत में जिगनबाग और प्लूथशाप की शुरुआती सेवकाइयों में से कुछ इस प्रकार से थी। इस समय दक्षिण भारत के यूरोपीय व्यापार केंद्रों में पुर्तगाली भाषा बोली जाती थी और तमिलनाडु की आम जनता की भाषा तमिल थी, इसलिए जिगनबास और प्लूथशाप ने ये दोनों भाषाएं सीखनी शुरू की। वे यूरोपियों के घरेलू नौकरों को पुर्तगाली भाषा में मसीही शिक्षा देने लगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक अनाथ आश्रम खोला जिसमें अनाथ बच्चों को मसीही शिक्षा देकर पालन पोषण किया गया। एक तमिल और पुर्तगाली विद्यालय भी स्थापित किया गया। जिगनबाग भाषा सीखने के विषय में निपुण था और व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदत भी उसमें थी। वह सेवकाई के क्षेत्र में उत्साह से ज्यादा तरक्की करने लगा। उसने हिंदुओं के साथ तमिल में धार्मिक चर्चा करना और उनके बीच प्रचार करना भी आरंभ किया। इस प्रकार एक कलीसिया की भी शुरुआत हुई। जिगनबाग ने तमिल में मसीही रचनाएं और अनुवाद भी किए। इसके साथ साथ संपूर्ण नया नियम और पुराना नियम रूत तक की पुस्तकों का अनुवाद भी उसने किया। एक भारतीय भाषा में बाइबल का अनुवाद करने का प्रयास करने वाला सबसे पहला व्यक्ति जिगनबाग था। जिगनबाग ने ट्रायंकबार के अलावा अन्य कई जगहों में भी सेवकाई को फैलाया। जिगनबाग और प्लूथशाप की सेवकाई आसान भी नहीं थी। हेसियस के द्वारा उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, परंतु 1714 में जिगनबाग डेनमार्क गया और राजा को उसने ट्रायंकबार की सेवकाई के बारे में विवरण दिया। जिगनबाग से पहले प्लूथशाप भी राजा से मिलने के लिए डेनमार्क गया था, परंतु वह कुछ खास नहीं कर सका था। इसके बाद हेसियस को उसके पद से हटा दिया गया। वापस आने के पश्चात जिगनबाग ने एक नई कलीसिया की स्थापना की, अध्यापकों और धर्म शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण के केंद्र भी शुरू किए। जिगनबाग को एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। डेनमार्क के मिशन बोर्ड के अधिकारी वेंट ने मिशनरियों के लिए आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। ट्रायंकबार मिशन के द्वारा मसीहत को घृणा करने वाले स्थानीय लोग जो समाज के निम्न वर्ग के थे, आर्थिक तौर से भी कमजोर थे, इसलिए मिशनरी लोग उनकी आर्थिक जरूरतों में सहायता करना अपना कर्तव्य मानते थे। वेंट पश्चिम से भेजे जाने वाले पेशे से इस प्रकार की आर्थिक मदद करने या भूमि खरीदने या कलीसिया या स्कूल का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल करने के विरोध में था। वेंट का मानना था कि भारत की कलीसिया को अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए। इस विषय में आए विवाद के कारण जिगनवाग दुखी रूप से निराश हो गया। इस कारण वह बीमार भी पड़ गया और 1719 में 36 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा ने वेंट को उसके पद से हटाया। जिगनवाग पुलुतशाब के अलावा अन्य कई प्रोटेस्टेंट मिशनरी भी भारत में आए। ट्राइक्यूबार और दक्षिण भारत के अन्य कई जगहों में प्रोटेस्टेंट लोगों की सेवकाई फैल गई। कई मसीही लोग भी जो पहले यीशु समाज मिशनरियों के द्वारा रोमन कैथोलिक मसीही बन गए थे, अब इन प्रोटेस्टेंट मिशनरियों की पुस्तकों को पढ़कर या प्रोटेस्टेंट विश्वासियों के प्रयासों से प्रोटेस्टेंट मसीहत को अपनाने लगे। प्रोटेस्टेंट मिशन की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कई भारतीय लोगों को मसीही शिक्षक और पासवानों के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रकार एक हिंदू व्यापारी का बेटा एरन भारतीय पासवान बना। संक्षिप्त में भारत में आए प्रोटेस्टेंट मिशन के कार्यों में मुख्य ये बातें शामिल थीं: अनाथ आश्रम तथा स्कूल की स्थापना, सुसमाचार प्रचार और कलीसिया स्थापना और मसीही शिक्षा देना, भारतीय धर्म शिक्षक गांव-गांव और घर-घर में मसीही शिक्षा देते थे। नियमित अवधि में वे मिशनरियों के साथ इकट्ठे होते थे, अपनी सेवकाई का विवरण देते थे और मिशनरियों को उपदेश देते थे। जो भारतीय लोग सेवकों के रूप में नियुक्त किए गए थे, वे इन विदेशी मिशनरियों के अधीन में ही कार्य करते थे। विलियम कैरी का भारत आना। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से लेकर पश्चिम के कई देशों में गैर मसीही देशों में कार्य करने के लिए प्रोटेस्टेंट समुदायों के द्वारा विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई। उदाहरण के लिए बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी, लंदन मिशनरी सोसाइटी, चर्च मिशनरी सोसाइटी, वेस्लियम मिशनरी सोसाइटी, BMS की स्थापना एक ग्रामीण पासवान विलियम कैरी और उनके साथियों के द्वारा की गई थी। विलियम कैरी के यशाया अध्याय 54 आयत 2-3 पर आधारित संदेश के दो प्रसिद्ध बिंदु, जिनसे उसके साथी सेवकों को BMS की स्थापना के लिए प्रेरणा मिली, ये थे: परमेश्वर से महान कार्यों की अपेक्षा करो, परमेश्वर के लिए महान कार्यों का प्रयास करो। इस समय विलियम कैरी एक ग्रामीण विद्यालय के अध्यापक और एक मोची के रूप में भी कार्य करते थे। विलियम कैरी 1793 में अपने परिवार के साथ भारत आया। विलियम कैरी BMS के प्रथम दो मिशनरियों में से एक था। दूसरा मिशनरी जॉन थॉमस नामक एक डॉक्टर था, जो भारत में पहले भी आ चुका था और उसके कहने से ही BMS ने बंगाल को अपना पहला कार्य क्षेत्र के रूप में चुना। BMS की यह योजना थी कि मिशनरी लोग अपनी जीविका का रास्ता स्वयं ढूंढ लें। उनको कुछ सामग्रियां भी दी गई थीं, जिनकी बिक्री से उनको एक वर्ष तक की आर्थिक सहायता मिल जाती थी। लेकिन थॉमस के कारण पूरा धन 2 महीने में ही खर्च हो गया। कैरी को और थॉमस को बाद में जॉर्ज अडनी नामक व्यक्ति ने अपनी फैक्ट्रियों में मैनेजर बना लिया। कैरी ने मैनेजर का कार्य करने के साथ साथ बंगाली और संस्कृत भाषाएं भी सीखी। उसने संपूर्ण नया नियम और पुराने नियम का एक बड़ा भाग बंगाली भाषा में अनुवादित भी किया। एक बाढ़ के कारण उसकी फैक्ट्री बंद कर दी गई। सेरामपुर मिशन 1799 में 4 मिशनरी परिवार कोलकाता से लगभग 25 किलोमीटर दूर सेरामपुर में आए, जो BMS के द्वारा भेजे गए थे। कैरी ने अपना पहला कार्य क्षेत्र छोड़कर सेरामपुर आया। इन नए लोगों में से कई लोगों की मृत्यु हो गई, परंतु बच जाने वालों में से 2 व्यक्ति जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड भी कैरी के साथ एक प्रसिद्ध सहभागिता बन गई। आज ये भी मिशनरी सेरामपुर ट्रायो के नाम से जाने जाते हैं और इनके द्वारा सेरामपुर में हुई सेवकाई को सेरामपुर मिशन कहा जाता है। मार्शमैन एक स्कूल शिक्षक था और वार्ड एक मुद्रक था। सेरामपुर ट्रायों की कुछ मुख्य सेवकाइयां इस प्रकार थीं। बाइबल अनुवाद। बंगाल में आने के कुछ समय बाद ही कैरी ने नए नियम को बंगाली में अनुवादित किया था। 1801 में सेरामपुर में इस नए नियम की छपाई हुई थी। बंगाली के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी सेरामपुर ट्रायों ने बाइबल का अनुवाद करके उनको छापा। कैरी ने स्वयं बंगाली, हिंदी, संस्कृत और मराठी में बाइबल का अनुवाद किया। मार्शमैन और वार्ट ने भी अनुवाद का कार्य किया। सेरामपुर ट्रायों ने अनुवाद कार्य के लिए कई पंडितों और विदेशियों की भी सहायता ली। 1834 में कैरी की मृत्यु के समय तक संपूर्ण बाइबल के 6 अनुवाद, नए नियम के 23 अनुवाद और 10 अन्य भाषाओं में बाइबल के छोटे अंश प्रकाशित हुए। इन भाषाओं में भारत की भाषाओं के अलावा कुछ अन्य देशों की भाषाएं भी शामिल थीं, जैसे बर्मा, जावा, मलाया और चीन की भाषाएं। इस बात को अवश्य स्वीकारना होगा कि इस प्रकार तैयार किए गए अनेक अनुवाद बहुत त्रुटिपूर्ण थे। फिर भी निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। आज के इस ऑडियो में इतना ही। प्रिय मित्रों, इस ऑडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।